मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है उसका जो शेष भाग है उस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले एक जो दूसरी घटनाएं हैं, जो खबरें हैं कहना चाहिए, आइए उन्हें देख लेते हैं। कल के रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में जो हुबली स्टेशन है उस पर विश्व के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। क्योंकि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में आपको बताया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल इस तरह के एक दो प्रश्न प्री में पूछ लिए गए थे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट है कर्नाटक, जो स्टेशन है वो है हुबली स्टेशन, और जो सबसे लंबा है वह है प्लेटफार्म, और ये केवल देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म नहीं है बल्कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। दोस्तों, मेरे पास दूसरी खबरें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इस विषय पर विस्तार से बात कर ली जाए, और यदि वक्त मिला तो फिर मैं दूसरी जो खबरें हैं उन पर आऊंगा, क्योंकि खबरों का संकलन मेरे पास अभी काफी कुछ हो चुका है, लेकिन उन पर हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग के बारे में जो बातें कही हैं, या कह लीजिए चुनाव आयुक्तों के बारे में जो बातें कही हैं, उसकी शुरुआत मैंने फ्राइडे से की हुई है, और मैं केवल आपको वे बातें ही नहीं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बल्कि उससे ज्यादा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई भी इस तरह की खबर आती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे उसे पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सभी घटनाओं के बारे में नहीं, सभी खबरों के बारे में नहीं, उन खबरों के बारे में जिन्हें आप एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, जो आपकी प्री एग्जामिनेशन का जो टारगेट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि वो 55% से ज्यादा का होना चाहिए, कि 55% स्कोर करना ही है सेफर साइड की दृष्टि से। और इसी तरह से जब आप मेंस का टारगेट बनाते हैं और आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका टारगेट इस तरह का होना चाहिए कि इनमें से 10 क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे से बना लूंगा, 10 प्रश्न मतलब बहुत अच्छे से। हाँ, बाकी जो 10 बच गए हैं उनमें से 5 मध्यम श्रेणी के होंगे, 2-3 छूटते छूटते आप यूं कह लीजिए कि बन जाएंगे, 1-2 ऐसे होंगे जो बिल्कुल बाउंस बॉल की तरह होंगे और सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे, आप उसे टच भी नहीं करेंगे। तो 10 तो आप बहुत अच्छे से बना सकें, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और उसी दृष्टि से मैं खासकर इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं। मैंने अपनी पिछली बात यहां पर खत्म की थी कि किस तरह से हमारे संविधान में, संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद की व्यवस्थाएं की गई हैं और कौन कौन से अनुच्छेद आपको मालूम होने चाहिए, बस संख्या की दृष्टि से। लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। ठीक है, मोटे तौर पर अगर हम कहें तो 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद हैं, राइट? इसमें जब आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे तो 324(2) की चर्चा विशेष रूप से की गई है, 324(2). इसका मतलब है कि 324(2) के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जब मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि 324(2) को आप रट डालें, अलग से नोट कर लें और इसे रट डालें, रिपीट कर रहा हूं, रट डालें। या फिर इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, इसकी जो आत्मा है उसे समझ लें। इसकी आत्मा क्या है, कहना क्या चाह रहा है अनुच्छेद 324(2)? संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो कुल मिलाकर के ये की गई है कि इसके लिए, यानी कि जो निर्वाचन आयोग होगा, फिर उसमें निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, तो उनके लिए संसद एक कानून बनाएगी और उस कानून के तहत फिर राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि जो मूल बात है, जो संविधान सभा ने समझा, वो ये है, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं सुझाया, उसने एक ढांचा प्रोवाइड कर दिया और संसद से यह उम्मीद की कि भाई आप एक कानून बनाइए और उस कानून के तहत फिर जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी पॉइंट पर कहा है कि अनफॉर्चुनेटली संसद ने अभी तक इसके बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। अब देखिए, अपेक्षा की गई थी कि आप कानून बनाइए, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी कमी आप मान करके चलिए। अब सवाल यह उठता है कि संसद ने ऐसा क्यों किया? तो शायद संसद ने ऐसा इसलिए किया हो कि देखिए, एक राजनीति का अपना एक चरित्र होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है निश्चित तौर पर वो चीजों को अपने हाथ में रखना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल। और ये केवल भारत की ही बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ही बात है। आप देखिए कि अभी इसराइल में क्या हो रहा है। इसराइल के जो अभी चुने गए प्रधानमंत्री हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को घटा दिया जाए और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली जाए। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे संविधान ने यह अपेक्षा की है लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो यह हो गया 324(2), जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए। हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में ही पूछ लिया जाए और बहुत क्लियर आपके दिमाग में तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसकी आत्मा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर खबर हर घटना का एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, हर घटना हर खबर, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो फिर आप भटक जाएंगे। तो इस खबर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी आत्मा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, याद रखिए उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, तीनों, इसमें आपके दिमाग में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह बात केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नहीं है, केवल चुनाव आयुक्तों के लिए है। नहीं, आप जानते हैं कि हमारा आयोग अब 3 सदस्यीय है, इसमें से एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 आयुक्त होते हैं। इन सब की जो नियुक्ति होगी अभी जिस तरीके से की जा रही है उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो अभी नियुक्ति कैसे की जाती है? अभी नियुक्ति सीधे सीधे सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार राष्ट्रपति को नाम भेज देती है और सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देता है, सीधी सी बात है। अब सवाल यह है कि जब सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रही है तो वो कितना तटस्थ और कितना निष्पक्ष होकर के आयुक्त की नियुक्ति करेगी, बस इसमें संदेह है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि सरकार ब्यूरोक्रेट्स से नियुक्ति करेगी या कहीं से भी अगर नियुक्ति करती है, क्योंकि उसकी योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, किसी को भी चुनाव आयुक्त बना सकती, किसी को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। तो हो सकता है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जो उसकी विचारधारा से प्रेरित हो, जो सरकार का समर्थन करने वाला हो, या अगर नहीं भी करने वाला हो तो सरकार उस पर दबाव डाल सके। कल्पना करके देखिए कि जब चुनाव हो रहे होते हैं, लोकसभा के जब चुनाव हो रहे होते हैं, उस समय देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो होता ही है, सरकार होती है। इसका मतलब है कि जो संदेह किया जा रहा है, किया जा सकता है भविष्य के लिए, और किया जाता रहा है, हमेशा होता रहा है ये, इसी तरह से कि भाई ये जो चुनाव आयोग जो निर्णय ले रहा है वो बहुत तटस्थ होकर के निर्णय नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का फेवर कर रहा है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार ने की है। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये नियुक्ति सीधे सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार इससे बिल्कुल अलग हो जाए? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप सरकार को अलग कर देंगे तो मान करके चलिए कि फिर उस नियुक्ति का, उस संस्थान का महत्व नहीं रह जाएगा। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसके बिना आप कैसे किसी चीज को आगे बढ़ा सकेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला सुझाया, इस फार्मूले पर आपको विचार करना चाहिए। उसने फार्मूला सुझाया कि एक कमेटी बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए, और उस समिति में कौन कौन लोग होंगे। अब आप देखिए, डेमोक्रेसी तो यही है ना, एक व्यक्ति का निर्णय डेमोक्रेसी नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों का निर्णय डेमोक्रेसी है, सीधी सी बात है। उसमें प्रधानमंत्री होंगे, डेफिनेटली प्रधानमंत्री होने ही चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री तो अभी भी हैं, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए, ताकि जिसकी नियुक्ति हुई है उस पर राष्ट्र भरोसा कर सके, विश्वास कर सके, विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता। देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके सबसे ज्यादा होंगे, उसके जो लीडर होंगे, लोकसभा, राज्यसभा नहीं, याद रखिए लोकसभा, दो हो गए। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री और इसके बाद विपक्ष के नेता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जिससे बनाना चाह रहे हैं विपक्ष के नेता उससे सहमत नहीं है, तो आपस में बातचीत करेंगे, मीडिया में आएगा, लोगों को पता लगेगा कि भाई क्यों विपक्ष के नेता उससे सहमत नहीं है, तो वहां एक बैलेंस आएगा। इसके बाद तीसरे और सदस्य होंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट को तटस्थ ही मानते हैं और अपने इस विश्वसनीयता को सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा है, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यहां देखिए प्रधानमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल ही तो दूसरे संस्थान के प्रतिनिधि होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीन लोग होंगे, तीन लोग फैसला करेंगे कि किसे बनाया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसी को बनाना चाह रहे हैं, हम सरकार की अगर बात करें, लेकिन विपक्ष के नेता और सीजेआई उसे सहमत नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो नहीं बन पाएंगे। आप देख रहे हैं ना, मतलब यहां सीधे सीधे प्रधानमंत्री को बहुमत की स्थिति में नहीं रखा गया है। मान लीजिए कि विपक्ष के जो नेता हैं उनके स्थान पर लोकसभा के स्पीकर को रख दिया जाता, तो आप देखेंगे कि समिति कमजोर हो जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और इसके बाद जो लोकसभा में जो स्पीकर है वो भी उन्हीं के पार्टी के हैं, तो फिर उस जो नियुक्ति होगी उनकी जो विश्वसनीयता है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यह जो समिति है यह नाम रिकमेंड करेगी और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देंगे। अब आप देखिए कि कितने स्पष्टता के साथ, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। और अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्री एग्जामिनेशन में अगर इस पर कोई प्रश्न पूछा गया, जो अब होने वाले हैं, और मेंस में जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप केवल इसके आधार पर उन प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों उनके बारे में आपकी तैयारी इसी तरीके की होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ अंबिकापुर शहर की पूजा पांडे ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अंबिकापुर मेरा अपना शहर रहा है, तो पूजा पांडे एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रिया रानी, रवि दत्त और महेंद्र चावड़ा जोधपुर से, जिन्होंने अब अपना नाम शायद बदलकर महेंद्र जोधपुरी कर लिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।